एकत्र ज्ञानगोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानगोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, एकत्र ज्ञानगोष्ठी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता है, पर अक्सर शायद हमारी नजर से ओझल रहता है।
हाँ,
यह है अवचेतन पूर्वाग्रह यानी अनकॉन्शियस बायस। ये कैसे हमारी सोच को, हमारी नज़र को, यहाँ तक कि हमारे कामों पर भी असर डालता है, इसी की गहराई में आज हम उतरेंगे।
बिल्कुल। और इस सफर में हमारी गाइड होंगी डॉक्टर जेनिफर एबरहार्ट और उनकी बहुत ही जरूरी किताब बायस्ड अनकवरिंग द हिडन प्रेजुडिस दैट शेप्स व्हाट वी सी थिंक एंड डू।
बायस्ड,
हाँ,
बायस्ड ये किताब इस बात पर रोशनी डालती है कि क्यों हम चाहे कितने भी मतलब अच्छे इरादे वाले क्यों ना हो, अनजाने में पक्षपाती हो सकते हैं और इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है। आज के दौर में तो ये और भी जरूरी हो गया है, जहां हम इतनी बातें करते हैं बराबरी की, न्याय की, तो इस अदृश्य शक्ति को समझना मुझे लगता है बहुत अहम है।
सही कहा। तो हमारा इरादा यही है कि इस गहरी रिसर्च के जो मुख्य विचार हैं उन्हें एक दिलचस्प आम बातचीत के जरिए सामने लाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं।
बिल्कुल, सबसे पहले शायद लेखिका के बारे में जानना अच्छा रहेगा। डॉक्टर जेनिफर एबरहार्ट,
हाँ, बताइए उनके बारे में।
वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सामाजिक मनोविज्ञान की प्रोफेसर हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्टैनफोर्ड स्पार्क सेंटर की सह निदेशक भी हैं।
स्पार्क, ये क्या है?
हाँ, स्पार्क मतलब सोशल साइकोलॉजिकल आंसर्स टू रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस। ये सेंटर सामाजिक मनोविज्ञान की रिसर्च को असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने में इस्तेमाल करता है। तो मतलब वो सिर्फ थ्योरी पर ही काम नहीं करती, बल्कि उसे लागू कैसे किया जाए इस पर भी उनका फोकस है।
अच्छा, ये तो काफी प्रैक्टिकल अप्रोच हुई। और उनका अनुभव कैसा है इस फील्ड में?
अरे बहुत जबरदस्त, उन्हें 2 दशकों से ज्यादा का तजुर्बा है अवचेतन पूर्वाग्रह पर रिसर्च करने का, खास तौर पर नस्ल मनोविज्ञान और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्याय का जो जटिल रिश्ता है उस पर।
2 दशक?
हाँ, हार्वर्ड PhD है और तो और उन्हें मैकआर्थर फेलोशिप भी मिली हुई है, जिसे लोग जीनियस ग्रांट भी कहते हैं।
अरे वाह, जीनियस ग्रांट, ये तो बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल, और उनकी एक और खास बात है जो मुझे लगता है उनके काम को और भी अहम बनाती है। वो एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला अकेडमिक है, तो वो इस विषय पर सिर्फ एक बाहरी विशेषज्ञ की तरह नहीं लिखती, वो अपने निजी अनुभव और अपनी कठोर वैज्ञानिक जांच दोनों को अपने काम में लाती हैं। उनकी रिसर्च सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है,
अच्छा,
वो पुलिस विभागों के साथ, स्कूलों के साथ, बड़ी कंपनियों के साथ, मतलब जमीनी स्तर पर काम करती हैं।
तो ये कॉम्बिनेशन है पर्सनल एक्सपीरियंस और साइंटिफिक रिसर्च का।
एग्जैक्टली, और यही चीज उनके काम को एकेडमिक दुनिया और असल जिंदगी के बीच एक पुल जैसा बनाती है। उनका नजरिया सिर्फ किताबी नहीं है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने पहले भी इस पर काफी काम किया है कि कैसे नस्लीय रूढ़िवादिता हमारी देखने की क्षमता और हमारे फैसलों पर असर डालती है, खासकर उन मुश्किल हालात में जहां पुलिस शामिल हो।
समझ गया। तो जेनिफर एबरहार्ट का बैकग्राउंड तो बहुत प्रभावशाली है।
हाँ,
अब उनकी किताब बायस्ड पर आते हैं, इसका मतलब मेन आइडिया क्या है?
हाँ, तो बायस्ड का जो मूल विचार है वो ये है कि पूर्वाग्रह एक तरह का छुपा हुआ ढांचा है, एक हिडन स्ट्रक्चर जो हमारी चेतना, हमारी जानकारी के बिना ही काम करता रहता है।
हमारी जानकारी के बिना?
हाँ, और ये ढांचा तय करता है कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं, किसी सिचुएशन का मतलब क्या निकालते हैं और फिर उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। और ये सिर्फ कुछ बुरे या पक्षपाती लोगों की बात नहीं है।
अच्छा, यानी ये हम सब पर लागू होता है। तो फिर एबरहार्ट का मकसद क्या है इस किताब से? क्या वो सिर्फ प्रॉब्लम बता रही हैं या कोई सोल्यूशन भी है?
नहीं, उनका मकसद दोहरा है। पहला तो ये कि अवचेतन पूर्वाग्रह, खासकर नस्ल से जुड़े पूर्वाग्रह, कि जो ये अदृश्य ताकतें हैं उनको सबके सामने लाना, उनको उजागर करना। और दूसरा, हमें वैज्ञानिक समझ देना और साथ ही कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताना जिससे हम इन पूर्वाग्रहों को पहचान सकें और उनका सामना कर सकें। तो ये सिर्फ समस्या गिनाने वाली किताब नहीं है।
ठीक है।
और किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो बहुत मजबूत है, वो हमारे सोचने के तरीके को चैलेंज करता है। पहली बात तो ये, जैसा मैंने कहा, कि पूर्वाग्रह सिर्फ कुछ लोगों की कमी नहीं है, ये एक आम मानवीय प्रवृत्ति है।
मतलब ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है।
हाँ, एक तरह से ये हमारे दिमाग के विकास से जुड़ा है। शायद लाखों साल पहले हमें जिंदा रहने में मदद करता था, जल्दी से दोस्त और दुश्मन पहचानने में, पर आज के समाज में ये दिक्कतें पैदा कर रहा है और हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास ने इसे और पक्का कर दिया है।
और दूसरी अहम बात क्या है?
दूसरी अहम बात यह है कि ये किताब इस भ्रम को तोड़ती है कि सिर्फ अच्छे इरादे रखना ही काफी है। हम सब सोचते हैं, अरे हम तो निष्पक्ष हैं, हम कहाँ भेदभाव करते हैं।
हाँ बिल्कुल,
लेकिन एबरहार्ट दिखाती हैं कि नेक इरादे वाले लोग भी अनजाने में, बिल्कुल अनजाने में, नुकसानदेह सोच और भेदभाव भरे रिवाजों को बढ़ावा दे सकते हैं।
ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है ना, कि हमारी नीयत साफ हो फिर भी हम गलती कर सकते हैं।
बिल्कुल। और किताब उन खास जगहों पर ध्यान देती है जहां इस पूर्वाग्रह का असर सबसे ज्यादा और गंभीर होता है, जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस की रोक टोक से लेकर सजा सुनाने तक, शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों में बच्चों के साथ कैसा बर्ताव होता है, और हमारे काम की जगहों पर, मतलब नौकरी देने से लेकर तरक्की देने तक के फैसलों में।
पर जैसा आपने कहा, किताब सिर्फ अंधेरी तस्वीर दिखाकर नहीं छोड़ती।
नहीं, बिल्कुल नहीं। एबरहार्ट पूर्वाग्रह से होने वाले नुकसान को बहुत गंभीरता से लेती हैं, लेकिन वो किसी पर दोष मढ़ने के बजाय इसे एक ऐसी समस्या की तरह देखती हैं जिसका हल खोजा जा सकता है। ये एक उम्मीद भरी बात भी है।
चलिए, ये अच्छी बात है। तो अब किताब के कुछ खास हिस्सों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एबरहार्ट पूर्वाग्रह की जड़ें कहाँ देखती हैं, मतलब ये शुरू कहाँ से होता है?
किताब के शुरुआती हिस्सों में एबरहार्ट पूर्वाग्रह की वैज्ञानिक बुनियाद समझाती हैं। वो एक टर्म इस्तेमाल करती हैं, ऑटोमैटिक मेंटल एसोसिएशन।
ऑटोमैटिक मेंटल एसोसिएशन सुनने में थोड़ा टेक्निकल है। हाँ है, पर इसका मतलब सीधा सा है। हमारा दिमाग बिना हमारी सचेत कोशिश के अपने आप ही चीजों, लोगों और उनकी खासियतों के बीच कनेक्शन बना लेता है, रिश्ते जोड़ लेता है, और ये बिजली की रफ्तार से होता है।
अच्छा, बिना सोचे समझे?
हाँ बिल्कुल, और वो इसे प्रयोगों से साबित करती हैं। एक मशहूर उदाहरण है कि कैसे लोग, भले ही वो सचेत तौर पर मानते हों कि नस्लीय रूढ़िवादिता गलत है,
हाँ,
फिर भी अवचेतन स्तर पर सबकॉन्शियसली वो अश्वेत चेहरों को अपराध या खतरे से ज्यादा जल्दी जोड़ लेते हैं।
ये सोचना ही अजीब है कि हमारा दिमाग पर्दे के पीछे ये सब कनेक्शन बना रहा
है ना? ये दिखाता है कि पूर्वाग्रह हमारे दिमाग की तेज अनजाने में होने वाली प्रक्रियाओं का नतीजा है।
ठीक है, तो ये तो हुई सोच की बात, पर किताब का नाम है बायस्ड हम क्या देखते हैं। क्या ये हमारे देखने की क्षमता पर भी असर डालता है? और यहाँ एक ऐसी बात आती है जिसने मुझे सचमुच चौंका दिया था। एबरहार्ट बताती हैं कि पूर्वाग्रह सिर्फ हमारे विचारों या हम चीजों का क्या मतलब निकालते हैं उसे ही नहीं बदलता, बल्कि हम असल में क्या देखते और याद रखते हैं उसे भी बदल सकता है। ये सिर्फ राय की बात नहीं ले जाती, फिर ये हमारी बुनियादी इंद्रियों के लेवल पे काम करता है।
क्या मतलब? हम सोचते हैं कि हम जो देख रहे हैं वो सच है, पर वो भी हमारी अंदरूनी सोच से बिगड़ सकता है। कोई उदाहरण है इसका?
बिल्कुल। रिसर्च दिखाती है कि नस्लीय पूर्वाग्रह के कारण पुलिस अधिकारी कभी कभी अश्वेत व्यक्ति के हाथ में, मान लीजिए मोबाइल फोन है, उसको भी गलती से हथियार देख लेते हैं।
अरे
हाँ, या फिर गवाहों द्वारा अश्वेत संदिग्धों की गलत पहचान करने की संभावना ज्यादा होती है।
ये तो बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूर्वाग्रह हमारी सच्चाई की धारणा को ही, मतलब फंडामेंटल लेवल पर बदल सकता है।
एग्जैक्टली। और इसी का असर आपराधिक न्याय प्रणाली पर बहुत गहरा पड़ता है।
हाँ, किताब इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि आपने बताया कि उनका एक मुख्य फोकस एरिया है।
हाँ, किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी पर केंद्रित है। एबरहार्ट आंकड़ों और रिसर्च से दिखाती हैं कि कैसे पूर्वाग्रह न्याय प्रणाली के हर कदम पर असर डालता है। पहली बार पुलिस से सामना होने से लेकर सजा मिलने और पैरोल के फैसलों तक, उन्होंने खुद पुलिस विभागों के साथ काम करके ये समझने की कोशिश की है कि ट्रैफिक रोकते समय या संदिग्धों की पहचान करते समय या बल प्रयोग करते समय अधिकारियों के जो अवचेतन पूर्वाग्रह हैं वो उनके फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं।
और इसमें एक बहुत परेशान करने वाला पहलू है जिसका विश्लेषण वो करती हैं, अमानवीकरण यानी डीह्यूमनाइजेशन।
अमानवीकरण, हाँ।
ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें कुछ समूहों के लोगों को, खासकर अश्वेत पुरुषों को, इंसानों से ज्यादा जानवरों से, जैसे वानरों, एब्स से जोड़ा जाता है। और ये सिर्फ एक सोच नहीं है, एबरहेट दिखाती हैं कि ये सोच न्याय प्रणाली में उनके साथ होने वाले ज्यादा कठोर व्यवहार से जुड़ी हुई है। क्या इसका कोई खास उदाहरण दिया है किताब में?
हाँ, ऑस्कर ग्रांट का केस है, जिसे शायद कुछ लोगों ने सुना भी हो। एक निहत्ते अश्वेत युवक को पुलिस अधिकारी ने गोली मार दी थी।
हाँ, याद है मुझे कुछ।
अधिकारी ने बाद में कहा कि वो टेजर निकालना चाहता था, जो कम घातक होता है, पर गलती से बंदूक निकल गई। एबरहार्ट इस तरह के मामलों को देखती हैं और सवाल उठाती हैं कि क्या उन चंद पलों के फैसले में अश्वेत पुरुषों से जुड़े खतरे के जो अवचेतन संबंध है और ये जो अमानवीकरण की भावना है, क्या उसने कोई भूमिका निभाई होगी?
ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम के अंदर ये छोटे छोटे पल भर के फैसले कितने बड़े अन्याय का कारण बन सकते हैं।
बिल्कुल,
ये तो बहुत गंभीर है। और क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही कुछ होता है? क्या स्कूलों में भी ये पूर्वाग्रह काम करता है?
हाँ, दुर्भाग्य से स्कूलों में भी पूर्वाग्रह अपना असर दिखाता है। ये शिक्षकों की उम्मीदों से लेकर बच्चों को दी जाने वाली सजा तक सब कुछ प्रभावित कर सकता है।
शिक्षकों की उम्मीदें कैसे?
जैसे रिसर्च बताती है कि अश्वेत छात्रों को अक्सर उन्हीं गलतियों के लिए ज्यादा सख्त सजा मिलती है, जैसे सस्पेंशन या स्कूल से निकालना, जिनके लिए शायद श्वेत छात्रों को हल्की सजा दी जाती है या चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है।
स्कूलों में इस तरह का फर्क, ये तो बच्चों के भविष्य पर कितना गहरा असर डालता होगा, है ना?
हाँ।
और क्या ये बड़ी उम्र में शुरू होता है या पहले से ही?
चिंता की बात यही है कि एबरहार्ट बताती हैं कि ये फर्क प्री स्कूल जितनी छोटी उम्र से ही दिखने लग सकता है।
प्री स्कूल से?
हाँ।
और वक्त के साथ ही बढ़ता जाता है। ये न सिर्फ उनकी पढ़ाई पर असर डालता है, बल्कि उनके पूरे जीवन के रास्ते को, उनके भविष्य को बदल सकता है। ऐसा कैसे बन जाते हैं?
हाँ, किताब आगे बढ़कर यही विश्लेषण करती है। एबरहार्ट दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग लोगों के छोटे छोटे पूर्वाग्रह मिलकर संस्थागत नियमों और नीतियों का हिस्सा बन जाते हैं, सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं।
लेकिन नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं ना?
हाँ, कई बार नियम या प्रक्रियाएं दिखने में एकदम निष्पक्ष लगती हैं,
न्यूट्रल,
सबके लिए बराबर, लेकिन उनका नतीजा ऐसा होता है कि वो किसी खास समूह जैसे अश्वेत या दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसे ही संस्थागत या प्रणालीगत पूर्वाग्रह कहते हैं, सिस्टमिक बायस।
इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं, असल जिंदगी में ये कैसे दिखता है? जैसे कहां लोगों को घर मिल पाता है, आवासीय अलगाव, या नौकरी पाने के तरीके क्या हैं, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं तक किसकी पहुंच आसान है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं नस्ल या भारत में कहें तो जाति, धर्म, समुदाय और उनकी योग्यता के बारे में हमारी जो छिपी हुई धारणाएं हैं उनको दर्शाती भी हैं और उन्हें और मजबूत भी करती हैं। तो मतलब प्रॉब्लम सिर्फ लोगों की सोच में नहीं है, बल्कि पूरे ढांचे में है।
ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर लगती है। ऐसा लगता है कि ये इतना फैला हुआ है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्या किताब कोई उम्मीद भी जगाती है? क्या हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में?
बिल्कुल, यही तो किताब की खास बात है। इसका आखिरी हिस्सा समाधान और हस्तक्षेप पर ही केंद्रित है। एबरहार्ट सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ती, वो सबूतों पर आधारित एविडेंस बेस्ड रणनीतियां भी बताती हैं, जिनसे पूर्वाग्रह और उसके बुरे असर को कम किया जा सकता है।
अच्छा, किस तरह की रणनीतियाँ? क्या सिर्फ लोगों को जागरूक करना, जैसे हम आज बात कर रहे हैं, क्या ये काफी है?
देखिए, जागरूकता एक जरूरी पहला कदम है, लेकिन वो काफी नहीं है। एबरहार्ट अलग अलग तरीकों पे बात करती है। हाँ, जागरूकता बढ़ाने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का जिक्र है, लेकिन साथ ही और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, वो उन संरचनात्मक बदलावों पर जोर देती हैं जो पूर्वाग्रह को हमारे जरूरी फैसलों पर असर डालने का मौका ही कम कर दें।
स्ट्रक्चरल चेंजेस।
जैसे भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनाना, कि सिर्फ इंटरव्यू के इम्प्रेशन पर निर्भर ना रहें, या फिर ऐसी नीतियां बनाना जो ये सुनिश्चित करें कि फैसले लेते समय पूर्वाग्रह हावी ना हो पाए।
मतलब सिस्टम को ही बदलना।
हाँ, मुख्य बात यह है कि पूर्वाग्रह से असरदार ढंग से लड़ने के लिए हमें दोनों लेवल पर काम करना होगा। व्यक्तिगत स्तर पर भी, यानी खुद की सोच पर काम करना, आत्मनिरीक्षण करना, और व्यवस्था के स्तर पर भी, यानी नियम और प्रक्रियाएं बदलना। तो अच्छी बात यह है कि हाँ, हम इस पर काम कर सकते हैं और तरीके मौजूद हैं।
ये सुनकर तसल्ली हुई। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या निकल कर आते हैं इस किताब से? एक बात जो मुझे खास लगी वो ये है कि पूर्वाग्रह एक सार्वभौमिक मानवीय मनोविज्ञान है। ये हम सबकी कहानी है, न कि सिर्फ कुछ खराब लोगों की।
हाँ, बिल्कुल।
ये समझ हमें दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय खुद को और सिस्टम को समझने में मदद करती है। भारत में भी हम इसे रोजमर्रा में देख सकते हैं, है ना?
हाँ।
ऑफिस में किसी की भाषा या पहनावे पर तुरंत राय बना लेना, या किसी खास समुदाय के बारे में बनी बनाई धारणाएं, ये अक्सर अवचेतन होता है, हमें पता भी नहीं चलता।
बिल्कुल। और दूसरा अहम संदेश है कि पूर्वाग्रह की असली ताकत उसके अदृश्य होने में है, क्योंकि ये हमारी चेतना के नीचे काम करता है, हम इसे आसानी से देख नहीं पाते। और इसीलिए जैसा आपने कहा, सिर्फ अच्छे इरादे रखना काफी नहीं होता। हमें सक्रिय रूप से एक्टिवली इसे पहचानने और इसका सामना करने की जरूरत है। कई बार हम अपनी बातचीत में मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो किसी समूह के बारे में घिसी पिटी सोच को मजबूत करती हैं, और हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने क्या कर दिया।
तीसरा, ये समझना कि आज के पूर्वाग्रहों की जड़ें हमारे इतिहास और संस्कृति में हैं। किताब में जैसे अश्वेत होने को खतरे से जोड़ने की बात है, उसकी ऐतिहासिक वजह है। भारत के संदर्भ में देखें तो जाति, धर्म या क्षेत्र आधारित पूर्वाग्रहों का भी एक लंबा इतिहास है, जो आज भी हमारी सोच और व्यवहार को अनजाने में प्रभावित करता है। इस कनेक्शन को समझना जरूरी है।
चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि कैसे छोटे छोटे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह मिलकर बड़े पैमाने पर प्रणालीगत असमानता पैदा करते हैं, सिस्टमिक इनइक्वालिटी।
छोटे छोटे पूर्वाग्रह कैसे?
सोचिए, अगर किसी इंटरव्यू पैनल में हर सदस्य अनजाने में ही सही किसी खास पृष्ठभूमि के उम्मीदवार को थोड़ा कम पसंद करें या उसके जवाबों को थोड़ा कमजोर समझें,
हाँ,
तो नतीजा क्या होगा कि उस पृष्ठभूमि के लोगों को मौके ही कम मिलेंगे। ये दिखाता है कि हमें सिर्फ अपनी सोच पर नहीं बल्कि उन प्रक्रियाओं और सिस्टम पर भी ध्यान देना होगा जिनमें ये पूर्वाग्रह काम करते हैं।
और एक और बात जो आपने पहले बताई थी, पूर्वाग्रह कोई पत्थर की लकीर नहीं है, माहौल और हालात इसे घटा बढ़ा सकते हैं।
सही।
जैसे जब हम तनाव में हों या किसी फैसले के लिए वक्त बहुत कम हो या जानकारी साफ न हो, तब पूर्वाग्रह के हावी होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि किन स्थितियों में हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
हाँ, और आखिर में मापने और जागरूक होने का महत्व, मेजरमेंट और अवेयरनेस। एबरहार्ट इस बात पर जोर देती हैं कि जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं और असमानताओं को ट्रैक करते हैं, तभी हम उन्हें समझ पाते हैं और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठा सकते हैं।
डेटा? किस तरह का डेटा?
जैसे क्या हमारे स्कूलों, दफ्तरों या दूसरी संस्थाओं में ऐसा डेटा है जो दिखा सके कि मौके और परिणाम सबके लिए बराबर हैं या नहीं? अलग अलग समूहों के लिए क्या स्थिति है? पारदर्शिता बदलाव ला सकती है।
ये सब जानने के बाद ये तो साफ है कि किताब में कई गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातें हैं। कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार जो खास तौर पर याद रह जाते हैं, कुछ कोट्स जैसे।
हाँ, कई है। एक जो मुझे बहुत असरदार लगी वो ये है, पूर्वाग्रह सिर्फ पुलिस की समस्या या श्वेतों की समस्या या पुरुषों की समस्या नहीं है, पूर्वाग्रह एक मानवीय समस्या है।
बहुत खूब। ये बात हमें याद दिलाती है कि ये हम सब की साझा चुनौती है और जिम्मेदारी भी।
बिल्कुल। और एक और विचार जो यथार्थवादी होने के साथ साथ उम्मीद भी देता है, हम सिर्फ इच्छा करके दुनिया को बिना पूर्वाग्रह के नहीं देख सकते, लेकिन हम बेहतर करने की इच्छा कर सकते हैं।
वाह, मतलब पूरी तरह पूर्वाग्रह मिटाना शायद नामुमकिन हो, पर हम कोशिश करके सही तरीके अपनाकर हालात को बेहतर जरूर बना सकते हैं। कोशिश करना जरूरी है।
हाँ, और एक और पंक्ति जो व्यक्तिगत सोच और सामाजिक हकीकत के रिश्ते को बहुत अच्छे से बताती है, हमारे दिमाग में पूर्वाग्रह हमारी दुनिया में पूर्वाग्रह बन जाता है।
हमारे दिमाग में पूर्वाग्रह हमारी दुनिया में पूर्वाग्रह बन जाता है। कितनी सीधी और गहरी बात है। हमारी अंदरूनी दुनिया बाहरी हकीकत को कैसे बनाती है, इसका सटीक निचोड़।
और ये भी बहुत विचारणीय है, यहाँ तक कि जब लोगों को पूर्वाग्रह देखना सिखाया जाता है तब भी उनके लिए इसे खुद में पहचानना मुश्किल हो सकता है।
हाँ, ये तो है। ये हमें विनम्र बनाता है और याद दिलाता है कि सिर्फ जानकारी हासिल कर लेना काफी नहीं है, हमें लगातार आत्मनिरीक्षण करते रहना होगा और शायद बाहरी मदद या संरचनात्मक बदलावों की भी जरूरत पड़ेगी, जैसा आपने कहा।
बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन विचारों का क्या करें, इन्हें कैसे अमल में लाएं?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। तो सबसे पहली चीज तो शायद यही है, व्यक्तिगत स्तर पर थोड़ी ज्यादा जागरूकता, अपने फर्स्ट रिएक्शंस पर ध्यान देना।
कैसे?
जैसे जब हम किसी से मिले या किसी के बारे में सुने तो क्या हम तुरंत कोई राय बना लेते हैं? क्यों? क्या वो राय तथ्यों पर आधारित है या किसी धारणा पर? और शायद अलग अलग तरह के लोगों से मिलना, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करना ये भी मदद कर सकता है।
हाँ, और काम की जगह पर तो इसके बहुत ठोस अनुप्रयोग हो सकते हैं। जैसे भर्ती करते समय सिर्फ इंटरव्यू पर निर्भर न रहकर एक स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया अपनाना, जिसमें सबके लिए सवाल और मूल्यांकन के मानदंड एक जैसे हों।
हाँ, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया।
बिल्कुल। इंटरव्यू पैनल में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को शामिल करना, टीम में बातचीत के दौरान ध्यान देना कि कहीं अनजाने में किसी की आवाज दब तो नहीं रही या किसी के योगदान को कम तो नहीं आका जा रहा।
शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षक ये सोच सकते हैं कि कहीं उनकी उम्मीदें अलग अलग छात्रों से अलग तो नहीं है, क्या अनुशासन के नियम सबके लिए निष्पक्ष रूप से लागू हो रहे हैं। एक ऐसा माहौल बनाना जहाँ सभी छात्र सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, ये बहुत जरूरी है।
और सामुदायिक स्तर पर भी हम भूमिका निभा सकते हैं। अपने आस पास देखना कि क्या नीतियाँ या प्रथाएं ऐसी हैं जो किसी खास समूह के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हों। हो सकता है हम स्थानीय प्रशासन या स्कूलों की बैठकों में शामिल हों, अपनी आवाज उठाएं, न्यायसंगत व्यवहार की वकालत करें।
और अगर हम माता पिता हैं तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को दुनिया की विविधता के बारे में क्या सिखा रहे हैं। क्या हम उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ सहजता से घुलने मिलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? क्या हम खुद उनके सामने समावेशी व्यवहार का उदाहरण पेश कर रहे हैं? ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि अवचेतन पूर्वाग्रह, चाहे वो नस्ल, जाति, लिंग या किसी भी आधार पर हो, एक बहुत शक्तिशाली और व्यापक चीज है। ये हम सबको प्रभावित करती है हमारी अच्छी नीयत के बावजूद। और ये समझना कि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, न कि सिर्फ किसी की नैतिक कमी, इसे संबोधित करने का पहला कदम है। और मेरे लिए सबसे अहम बात ये कि इसका हल दो तरफा है। हमें अपने अंदर भी झांकना होगा और बाहर के सिस्टम को भी बदलना होगा। सिर्फ व्यक्तिगत जागरूकता या सिर्फ नीतियां बदलना काफी नहीं है, दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां पूर्वाग्रह को फलने फूलने का मौका ही कम मिले।
मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात ये जानना था कि पूर्वाग्रह हमारी देखने की क्षमता को, हमारी बुनियादी धारणा को ही बदल सकता है। ये सोचना कि हमारी आंखें भी पक्षपाती हो सकती हैं, ये वाकई दिमाग हिला देने वाला था।
हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। और मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया विज्ञान आधारित समाधानों से मिलने वाली आशा ने। ये जानना कि पूर्वाग्रह कितना गहरा और पेचीदा है, ये थोड़ा डरा सकता है, लेकिन ये समझना कि हमारे पास इसे कम करने के लिए रिसर्च पर आधारित तरीके और रणनीतियां हैं, ये वाकई उम्मीद जगाता है। एक अंतिम सवाल जो हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने दायरे में ऐसे कौन से छोटे या बड़े सक्रिय कदम उठा सकते हैं जिनसे हमारे आसपास प्रणालीगत पूर्वाग्रह को पहचाना जा सके और उसे चुनौती दी जा सके।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।